भागवत सार की श्रृंखला में 25वें अध्याय पर चर्चा है, तीसरे स्कंद के। इसमें कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनमें से एक श्लोक को पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः सहनशील, कारुणिकाः दयालु, सुहृदः सुहृत्, सर्वदेहिनां समस्त जीवों के, अजातशत्रवः किसी के प्रति शत्रुता न रखने वाले, शांतः शांत, साधवः शास्त्रों के अनुसार चलने वाले, साधुभूषणः अलौकिक गुणों से भूषित। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। साधु के लक्षण हैं कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है और उसके सारे गुण अलौकिक होते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधु भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति जगाना है। यही उसकी दया है। वह जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। ये ही साधु के उपदेश हैं। वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता। वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है, अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतित आत्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते। वे इसे पसंद नहीं करते। यही उनका रोग है। साधु को भक्ति की महत्ता को समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक प्रहार कर दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। हरिदास ठाकुर को 22 जगह भरे बाजार में बेंत से पीटा गया और भगवान चैतन्य के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई तथा मधाई द्वारा हिंसक प्रहार किया गया। तो भी वे सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह सहिष्णु होता है और पतितों के प्रति दयालु होता है। वह दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभचिंतक है। वह न केवल मानव समाज का शुभचिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्यों को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्ते बिल्लियों को भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, दयालु होता है। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भव बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान चैतन्य के शिष्य शिवानंद सेन ने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु यह संसार इतना कृतघ्न है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए ही साधु सबों के प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांतिपूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन करे और साथ ही भगवत भक्त भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है, उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में सारे गुण होते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राधि पीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदायी अतिनीचोचतः करा हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। भगवान कपिल की शिक्षाएं अब इस अध्याय से प्रारंभ हो रही हैं। आगे के अध्याय इस पूरे स्कंद में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे हम इस अध्याय में भी देखेंगे। बहुत से सुंदर उपदेशों को भगवान कपिल देते हैं। तो इस अध्याय के लिए आप सबसे एक विनती है कि कल जब आप आए तो इस अध्याय में भक्तों के गुणों को दिया गया है, भगवान कपिल ने भी और प्रभुपाद ने अपने तात्पर्यों में। तो कृपया एक पेपर पर भक्तों के गुणों को लिख कर लाएं जो केवल इस अध्याय में दिए। वैसे आप लोगों को भक्तों के बहुत गुण पता हैं, लेकिन जो इस अध्याय में दिए हैं श्लोकों में और तात्पर्यों में, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसी एक सूची बनाएंगे और बनाकर अपने पास रखेंगे तो कम से कम रोज देख देख कर उन गुणों को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। तो बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे श्लोक में हम देख रहे हैं, श्लोक के अनुवाद में भी और तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने इतने गुणों को दिया है। तो कृपया कल आप सब एक सूची बनाकर लाइएगा, तो उसमें ऊपर लिखिएगा भक्तों के गुण, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय। और फिर एक एक गुण पूरा विस्तार से जो प्रभुपाद ने लिया है वो नहीं, एक गुण लिखना है, तितिक्षवा अर्थ क्या है, करुणा दयालु होते हैं, फिर सहनशील, ऐसे ऐसे गुणों को, बहुत सारे गुण हैं और भी इस श्लोक के आगे भी जो दो श्लोक हैं उनमें भी भक्तों के गुण दिए गए हैं, तो कृपया ये कीजिएगा। तो अब पिछले अध्याय में हमने देखा कि कर्दम मुनि ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है जाओ, और फिर अंत में कर्दम मुनि वहां से चले गए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। अब जब कर्दम मुनि चले गए तो माता देवहूति ने क्या किया, क्या प्रश्न हुए, क्या संवाद हुआ, तो ये पहले चार श्लोकों में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करने की विधि, शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हुए भी ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो किस उद्देश्य के लिए आते, भगवान कपिल आए और उनका उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान को देना, जो सबसे बड़ा उपहार है भगवान का। तो भगवान के आने का उद्देश्य शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि जीवों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना है। इस जगत में हम सब तीन गुणों में बंधे हुए हैं, अज्ञान में है, तमोगुण में है, रजोगुण में है और सत्वगुण में। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो इस गुण के परे है। तो व्यक्ति जब तक तमोगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान को ले नहीं पाता सत्वगुण में, क्योंकि तमोगुण में व्यक्ति हर चीज को बस केवल एक आलस से या कहना चाहिए कि अज्ञान में रहता है। रजोगुण में व्यक्ति कार्य करता रहता है, सत्व गुण में आकर भगवान की भक्ति के विषय में सोचता है। तो भगवान आते हैं आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, जैसे भगवान कपिल आए। और फिर शौनक ऋषि कहते हैं कि ये सबसे महान है भगवान, इनसे बड़ा कोई नहीं है, भगवान के परे कोई भी नहीं है। इस बात को शौनक आदि ऋषि कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, अर्थात गोविंद हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से गोविंद शब्द की परिभाषा तात्पर्य में करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि गोविंद अर्थात जो इंद्रियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, इंद्रियों को पुनः जागृत कर देते हैं। हमारी इंद्रियां इस समय भौतिक इंद्रियां हैं, तो वो गुणों के आधार पर कार्य करती हैं। कोई व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसकी इंद्रियां वैसे कार्य करती हैं, रजोगुण में वैसे कार्य होता है। लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि इन भौतिक इंद्रियों के परे आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है और आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों को पुनः जागृत करने का मार्ग भगवान प्रदान करते हैं। सही दृष्टि में इंद्रियों को आनंद तब मिलता है जब इंद्रियां आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आध्यात्मिक स्तर पर भगवान की सेवा करती हैं, और ये ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं, और इसीलिए वो गोविंद कहलाते हैं। गो अर्थात इंद्रियां, और जो इंद्रियों को आनंद दे, इंद्रियों को ज्ञान प्रदान करे, सही दृष्टि में इंद्रियों को पुनर्जागृत करे, वो इंद्रियां जो अब सुप्त अवस्था में हैं आध्यात्मिक इंद्रियां, उनको पुनः जागृत करे, उन्हें गोविंद कहते हैं। तो इस तरह शौनक ऋषि ने प्रश्न किया, और फिर उन्होंने कहा कि क्या संवाद हुआ, आप भगवान की कथा को बताइए, उन्होंने क्या ज्ञान दिया। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल करते, कीर्तन्य अनुकीर्तयः, कीर्तन कीजिए आप बताइए, लेकिन कैसे, अनुकीर्तया, अनुकीर्तया अर्थात, प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अनुकीर्तया। क्यों? क्योंकि अनुकीर्तया का अर्थ होता है जो आपने सुना है, सुखदेव गोस्वामी से जो सुना उसको दोहराइए। तो अनुकीर्त्य, अनु मतलब अनुगमन करना, अनु मतलब पीछे पीछे चलना, अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब जैसे दूसरों ने कार्य किया आचार्यों ने वैसे कार्य करना। तो अनुकीर्त्य का अर्थ होता है वैसे बताइए, वैसे बोलिए जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है। तो ये मार्ग है भक्ति का कि हमें अनुकीर्त्य, केवल जो हमने सुना है उसको दोहराना चाहिए और कुछ नहीं। प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि जो भी सुना है बस उसको दोहराइए, इधर उधर की बात नहीं, कोई बदमाशी नहीं। प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल करते हैं, कोई बदमाशी नहीं, बस जैसा कहा गया वैसा दोहराना है, जो भगवान ने कहा उसको दोहराना है, जो आचार्यों से सुना उसको दोहराना है। ये परंपरा है, हमें कोई नया मार्ग नया ज्ञान जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आचार्यों ने कह दिया अनुकीर्तया, बस उसको दोहरा दीजिए। जैसे आचार्यों ने हजारों लाखों लोगों के हृदय में उन शब्दों को कहकर भक्ति को प्रकट किया, आप भी उन शब्दों को दोहराइए और जीवन में जो भी कष्ट पा रहे हैं उन लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी केवल उन शब्दों को दोहराकर। तो इसलिए अनुकीर्तया, वो कहते हैं कि आप आपने जैसा सुना है उसको सुनाइए। तो फिर पांचवें श्लोक से आगे सुत गोस्वामी सुनाने लगते हैं कि कैसे मैत्रेय मुनि ने आगे संवाद किया, क्योंकि आप जानते हैं ये संवाद मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में चल रहा है। तो फिर कैसे संवाद हुआ और आगे क्या हुआ इसको फिर मैत्रेय मुनि सुनाने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि एक समय जब कर्दम मुनि चले गए तो माता देवहूति ने देखा कि कपिल मुनि वहीं रहे, भगवान कपिल गए नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञान देना था। वैसे तो भगवान कपिल ज्ञान देकर वो भी जाने वाले हैं, लेकिन ज्ञान देना है इसीलिए रुके रहे, आध्यात्मिक ज्ञान देना था। तो फिर ऐसा वर्णन है तो प्रभुपाद समझाते हैं कि किस तरह एक पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी माता को मुक्त करने के लिए ज्ञान प्रदान करे, संरक्षण करे। तो ऐसे जब उन्होंने देखा कि कपिल, भगवान कपिल एक समय एक स्थान पर बड़े आराम से बैठे थे बिंदु सरोवर के निकट, तो फिर माता देवहूति को स्मरण आया ब्रह्मा जी की बातों का कि ये तुम्हारा पुत्र तुम्हें ज्ञान प्रदान करेगा, तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करेगा और फिर सारे जगत में ये प्रचार करेगा। तो उस समय माता देवहूति भगवान कपिल के पास जाती हैं और बड़े नम्रता से उन्होंने माँ के भाव में नहीं लेकिन एक शिष्य के भाव में भगवान से, क्योंकि वो तो जानती हैं कि ये भगवान हैं, ब्रह्मा जी ने बता दिया कि ये जो पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ है ये भगवान हैं, तो अब वो जानती हैं कि भगवान हैं, तो इसीलिए बड़े एक शिष्य के भाव में बड़े आदर के भाव में वो जाती हैं। तो देखिए वो हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं कि जब एक शिष्य को गुरु के समक्ष प्रश्न करना चाहिए पूछना चाहिए तो कैसे पूछना चाहिए। हालांकि वो माँ है, उन्होंने जन्म दिया है भगवान कपिल को, लेकिन वो उस भाव में नहीं गई, अपने पुत्र के रूप में नहीं, उनको एक आध्यात्मिक गुरु मानते हुए गई। बहुत छोटे होंगे उनसे, स्वाभाविक है माँ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी उम्र क्या है, उनका मुझसे संबंध क्या है, उन्होंने गुरु माना। तो जब हम किसी के पास जाएं किसी से ज्ञान लेने के लिए तो इस भाव में जाना चाहिए, हमें ये नहीं उनकी उम्र नहीं देखनी चाहिए, हमारा क्या संबंध है, हो सकता है आपका पुत्र आपसे बहुत आगे बढ़ा हो तो उसको गुरु मानना चाहिए अगर वो ज्ञान दे सकता है। तो माता आई और उन्होंने प्रश्न करने प्रारंभ किए, और देखिए प्रश्न भी कैसे, उन्होंने और कोई भौतिक जगत के आनंद का प्रश्न नहीं किया क्योंकि पहले ही वो शोक कर चुकी थी। आपको स्मरण होगा पिछले अध्यायों में माता देवहूति ने कर्दम मुनि से कहा कि मेरा इतना दुर्भाग्य है, मुझे धोखा हो गया, भगवान की अलंघ्य माया ने मुझे ठग लिया है कि आप जैसे व्यक्ति जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, जो इस जगत से मोक्ष करा सकते हैं, मैंने क्या मांगा, आपके साथ थोड़े बहुत भोग की कामना कर ली, भौतिक चीजों को मांग लिया, बड़े दुख की बात है। तो पहले ही शोक कर चुकी हैं, इसीलिए अब वो पूर्ण लाभ को लेना चाहती है कि अगर भगवान कपिल स्वयं साक्षात भगवान मेरे समक्ष हैं तो मैं कोई इधर उधर की बातें ना करूं, मुझे कोई और विचार मन में नहीं आए। ये हमारे लिए बड़े आदर्श है कि जब हम भक्तों के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, तो भौतिक भोग की कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में शोक करना पड़ेगा जैसे देवहूति ने किया। कर्दम मुनि के साथ रहते हुए भी मांगा क्या कि थोड़ा बहुत भोग। वैसे माता देवहूति ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो आज्ञा का पालन कर रही थी क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कर्दम मुनि को प्रजनन करने की। लेकिन फिर भी हम सबके लिए वो एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं कि अगर हम एक साधु के पास जाकर, एक भक्त के पास जाकर कुछ अपने भौतिक भोगों की कामना करते हैं, कोई भौतिक आशीर्वाद मांगते हैं, तो अंत में हमें दुखी होना पड़ेगा। हम शोक करेंगे कि हाय इतने अच्छा हमारा संग था, क्योंकि कर्दम मुनि चले गए तो उस समय माता देहूति जानती थी जब कर्दम मुनि जाने वाले हैं, तो उन्होंने शोक किया कि आप थे मेरे साथ, आप हमारे सामने थे, बात कर रहे थे मुझसे, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा बहुत भौतिक भोगों का लाभ, बस असली लाभ नहीं लिया। लेकिन अब माता देवहूति ने कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया, अब उन्होंने प्रश्न किए भगवत धाम जाने के लिए, अब उन्होंने प्रश्न किए मुक्त होने के लिए। तो माता देवहूति कहती हैं भगवान के पास आके कि हे भगवान, मैं बहुत ज्यादा बंधी हुई हूं इन भौतिक भोगों में, भौतिक आसक्तियों में, और ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये मुझे बहुत तंग कर रही हैं। देखिए ऐसा प्रश्न एक माँ अपने पुत्र से कर रही है, क्यों, क्योंकि वो जानती हैं कि गुरु वो हैं जो बंधन को काट सकते हैं। गुरु भी ज्ञान तब देते हैं जब हम इस तरह के प्रश्न करते हैं, जब गुरु देखते हैं कि शिष्य तैयार हैं ज्ञान को लेने के लिए। देखिए वर्णन है कि भगवान कपिल रुके हुए थे ज्ञान देने के लिए, लेकिन उन्होंने बुलाकर ज्ञान नहीं दिया, गए नहीं ज्ञान देने के लिए, वो बैठे थे, क्योंकि जब आकर प्रश्न किया, जिज्ञासा हुई, देवहूति ने कहा बताइए, तब भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी इंद्रियां मुझे बहुत कष्ट दे रही, मैं बंधन में हूं इन इंद्रियों के कारण। असत इंद्रिय तर्षणा, असत इंद्रिय तर्षणा अर्थात ये जो असत इंद्रियां हैं, सत नहीं है, ये जगत को असत कहा गया है, ये जो बंधन है ये असत है। कैसे, प्रहलाद महाराज समझाते हैं, जब हिरण्यकश्यपु ने उनसे पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए, ज्ञान क्या है, तुमने क्या सीखा, तो प्रहलाद महाराज ने उनसे कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, अपने पिता को वो कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहान। वो व्यक्ति जिसने असत को ग्रहण कर लिया है सदा समुद्विग्न, हमेशा चिंता में रहता है। और देखिए इस जगत में हर व्यक्ति हमेशा चिंता में है, उसको मिल जाता है जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर भी चिंता में है, कष्ट में है, दुखों में है, क्यों, असत ग्रहण। और ये सच है, हमने सुना है लोग धन कमाने के लिए पागल रहते, धन मिल जाता है तो भी और चाहते हैं, अपने पुत्र पुत्री के विवाह के लिए चिंता में रहते हैं, वो हो जाता है तो फिर भी चिंता बनी हुई है, अरे क्या होगा वहां पर, तो बहुत सारी चिंताएं, क्यों, असत इंद्रिय तर्षणा। प्रहलाद महाराज भी समझाते हैं, सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहण, आपकी बुद्धि आपका मन सदा समुद्विग्न रहेगा अगर असत को ग्रहण किया है। सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहण, हितवात पातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। इसीलिए उसका उपाय क्या है, असत ग्रहण किया हुआ है आपने, दुख में हो कष्ट में हो, हे असुर वर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, उपाय क्या है? हितवात पातम ग्रह अंधकूपम, ज्ञान लो, समझो कि आप गिरे हुए हो। हितवात पातम गृह अंधकूपम, अंधे कुएं में गिरे हुए हो। वनम गतो यत हरिमाश्रयता, त्यागो और हरि का आश्रय लो। किस चीज को त्यागो? उस आसक्ति को त्यागो जिसके कारण कष्ट है। वनम गतो, वनम गतो मतलब वन में चले जाओ। वन में चले जाने का अर्थ है, हाँ, व्यक्ति को एक समय घर को त्यागना चाहिए, पूरे समय घर में नहीं पड़े रहना चाहिए। और अगर जब तक परिवार की जिम्मेदारियां हैं तब तक भी वन की तरह रहना चाहिए घर में। घर को वन बनाना चाहिए, वृंदावन। घर में भी आसक्त होकर गृह मेधी की तरह नहीं रहना चाहिए। तो वो कहते हैं वनम गतो यत हरिमाश्रयता। वन में जाने का उद्देश्य क्या है? वन में जाकर कोई पशुओं की तरह नहीं रहना है। हरिमाश्रयता, भगवान हरि का आश्रय लेना है। तो इसीलिए अगर हम लोग अपने अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हरि का आश्रय लेते हैं तो उसको वन बना सकते हैं। तो यहां पर वही माता देवहूति कहती हैं, असत इंद्रिय दर्शना। ये जो असत इंद्रियां हैं, झूठी इंद्रियां, प्रभुपाद कहते हैं क्यों असत इंद्रियां हैं ये? क्योंकि कई जन्मों में हमें इंद्रियां मिली हैं, और असत का मतलब होता है जो बदलता है, उसे असत कहते हैं क्योंकि बदल जाता है, सत्य नहीं है। जो सत होता है वो बदलता नहीं है, और जो असत होता है वो बदल जाता है। इसीलिए असत इंद्रिय दर्शना। तो प्रभुपाद कहते हैं हर जन्म में हमारी इंद्रियां बदली हैं, ये जो भौतिक इंद्रियां हैं। पशु जीवन में थे इंद्रियां दूसरी थी, मनुष्य जीवन में इंद्रियां दूसरी हैं, इंद्रिय भोग हैं, तो ये असत है। और देवहूति कहती ये असत इंद्रिय दर्शना, ये जो असत इंद्रियां हैं मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इसीलिए आप ही हैं केवल, आगे वो कहती हैं माता देवहूति कि आप ही एक मार्ग हैं जो मुझे इस अज्ञान से बाहर कर सकते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि ये शिष्य और गुरु के बीच संबंध है। जैसे माता देवहूति ने कहा कि केवल आप ही हैं जो मुझे अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मैं अंधकार में पड़ी हूं अपनी इंद्रिय असत इंद्रिय दर्शना के कारण। प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त का ये भाव होना चाहिए, जब वो गुरु के पास जाए तो उसका ये भाव होना चाहिए कि एक आप ही हैं जो मुझे यहां से निकाल सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येना तस्मय श्री गुरुवे नमः। वो कहती हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि एक शिष्य को इस तरह जाना चाहिए कि मेरे अज्ञान को केवल मेरे गुरु निकाल सकते हैं। कौन है गुरु? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के चक्षु प्रदान करते हैं। शलाका ऑपरेशन को भी कहते हैं, तो वो आंखों का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येना, और तब ऐसे ऑपरेशन करके ऐसे जैसे कोई व्यक्ति अंधा हो और कोई डॉक्टर उसकी आंखों का ऑपरेशन कर दे, और फिर ऑपरेशन करके जब उसकी पट्टी हटाई जाए और उसको सब दिखे तो कितना आनंद आता है उसको, वो सही दृष्टि में देख पाता है। नहीं तो अंधा होता है, अच्छे पेड़ के हरे भरे पेड़ के सामने बैठने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जान नहीं पाता, फूलों के रंग को देख नहीं पाता, फलों को देख नहीं पाता, भगवान की इस प्रकृति के सौंदर्य को देख नहीं पाता। इसी तरह हम सब इसी प्रकार हैं, अंधकार में, और गुरु ऑपरेशन करते हैं और हमारी आंखों को प्रदान करते हैं, सही दृष्टि में देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, चीजों को जैसी हैं वैसी देखने की क्षमता भगवान प्रदान करते हैं। अर्थात जो असत हैं उनको असत जानना, और जो सत हैं उनको सत जानना, ये गुरु कराते हैं। तो तो माता देवहूति प्रार्थना करती हैं कि आप कृपया मेरे इस अज्ञान को दूर कीजिए, क्योंकि अब तक मैं केवल अपने आप को शरीर मान रही हूं। आप बताइए कृपया क्या अंतर है पुरुष और प्रकृति में, भोक्ता और भोग्य वस्तु में क्या अंतर है। तो ऐसे जब प्रश्न किया माता देवहूति ने, तो फिर 12वें श्लोक से, ये माता देवहूति के 11वें श्लोक तक प्रश्न है, 12वें श्लोक से फिर भगवान कपिल भक्ति के वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो पहले वो योग का वर्णन करते हैं, करीब 18वें श्लोक तक वो कौन सा योग, भक्ति योग, या कहना चाहिए आध्यात्मिक योग का वर्णन करते हैं। तो आध्यात्मिक योग का वर्णन वो करते हैं कि वो क्या है, फिर उसके आगे भक्ति का गुणगान करते हैं, जैसे हम लोग इन श्लोकों में आगे देखेंगे जो आज हमने श्लोक पढ़ा। तो आध्यात्मिक योग का वर्णन वो करते हैं कि योग का उद्देश्य है भगवान से जुड़ना, और वो बताते हैं कि ये जो भक्ति योग है वो किस तरह से हमारे भौतिक सुख को और दुख को, दोनों को नाश करता। ये महत्वपूर्ण है, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम भौतिक भोग की कामना भी ना करें, भौतिक सुख की कामना नहीं करें। तो ये जो असली आध्यात्मिक योग है वो भौतिक सुख और दुख दोनों का नाश कर देता, अर्थात आपको तैयार कर देता है किस लिए, भगवान की भक्ति, सच्चा आनंद सत इंद्रियों के लिए, सत जगत के लिए। हम सब ने जो पकड़ा हुआ है वो असत है, और असत एक दिन बदल जाएगा, हमारा शरीर बदल जाएगा, हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार, हमारा धन बदल जाएगा, असत है। लेकिन जो सत को पकड़ लेता है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, फिर वो कभी नहीं बदलता। सत मतलब जो कभी नहीं बदलता, शाश्वत है। तो ऐसे स्थान को आध्यात्मिक योग के द्वारा पा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक योग में सांख्य आता है, अर्थात पदार्थ और जो शरीर और जो आत्मा है उसमें अंतर, योग आता है अर्थात भगवान से जुड़ने कैसे जुड़ना है, और साथ ही साथ भक्ति। तो इस श्लोक में, ये 13वां श्लोक में भगवान कहते हैं, तो इस श्लोक में तीन चीजों का उन्होंने वर्णन किया, सांख्य, योग और भक्ति, और इन्हीं तीनों चीजों को आगे आने वाले 9 अध्यायों में वो समझाने वाले हैं। तो ये बीज है, ये जो ज्ञान वो देने वाले हैं उनको एक श्लोक में उन्होंने कह दिया, अब उसी को आगे पूरे 9 अध्यायों में वो विस्तार से समझाएंगे। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए, और ज्ञान के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य। और फिर वो चेतना का भी वर्णन करते हैं कि किस तरह से हमारी चेतना अगर कृष्ण में लगी है तो वो हमें मुक्त कर सकती है, अगर वो भौतिक भोगों में लगी है तो वो हमें बांध सकती है। और ऐसा वर्णन करने के बाद फिर 19वें श्लोक से वो भक्ति का गुणगान करते हैं, ये बताते हैं कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी श्रेष्ठ है भक्ति। तो भक्ति का वर्णन करते हुए वो कहते, भक्ति कैसे हो सकती है, तो पहले ही कह देते कि अगर भक्ति करनी है भक्तों के संग में, प्रसान वसन्न अजराम शासम, वो कहते हैं कि ये जो बंधन है ये बहुत बहुत कड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण। वो एक श्लोक कहते हैं, प्रसंगम अजरम शा पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, वो कहते हैं कि अगर हमारी आसक्ति है, प्रसंग बहुत आसक्ति है, तो फिर एक पाश बंधन में पड़ जाते हैं हम लोग। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं, सएव साधुषु कृतो, अगर वही आसक्ति हमारी साधुओं में हो जाए, भक्तों में हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो वो मोक्ष का द्वार खोल देती है। तो वो कहते हैं कि भक्ति करना है तो भक्तों से आसक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, भक्तों के प्रति आसक्ति होने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो आज जो हमारी आसक्ति प्रसंगम प्रसंगम अजरम पाशम, आज जो हमारी आसक्ति हमें पाश अजरम पाशम बहुत कठोर कठोर बंधन में बांध रही है, अजरम पाशम स एव साधु शुकृतो, वही आसक्ति साधुओं के प्रति कीजिए। आज जो आसक्ति आपको भौतिक भोगों में है, आज जो आसक्ति अपने अपने आप में है, अपने शरीर में है, स एव, वही आसक्ति साधुओं में हो जाए, भक्तों में हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा बस। और साधु कौन है तो फिर उसका वर्णन करते हैं इस श्लोक में। हम लोग देखते हैं यहां साधुओं के लक्षण दिए गए हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधुवः साधवः साधुभूषणः। तो ये लक्षण जो दिए गए हैं, अब आगे के दो श्लोकों में भी वो लक्षण देते हैं। तो ये जो लक्षण है तितिक्षवः कारुणिकः, ये गौण लक्षण है, द्वितीय लक्षण है, ये प्रमुख लक्षण नहीं है भक्त के। प्रमुख लक्षण क्या है अगले श्लोक में देते हैं, बहुत सुंदर वो कहते हैं। मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माण्य त्यक्त स्वजन बांधवः। प्रमुख लक्षण क्या है भक्त के, तो कहते हैं ऐसा साधु अविचलित भाव से भगवान की कट्टर भक्ति करता है, भगवान के लिए संसार के अन्य समस्त संबंधों तथा पारिवारिक संबंध और मैत्री का भी परित्याग करता है, अर्थात केवल श्री कृष्ण भगवान की भक्ति बस अनन्य भाव से जो करता। ये प्रमुख लक्षण है कि अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता और उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहता, जैसे गोपियों ने किया। तो ऐसे वो लक्षण प्रकट करते हैं। इतने सुंदर श्लोक हैं ये सारे कि एक एक श्लोक पर कई कई दिनों तक चर्चा करनी चाहिए। जैसे यही श्लोक तितिक्षवः कारुणिकः, कैसे इन गुणों को उत्पन्न करना। तो इस तरह से ये भगवान के भक्तों के लक्षणों को बताते हैं और फिर आगे भी कहते हैं। मदाश्रय कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतः चेतसः। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में निमग्न रहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि कल आपको ये सब लिखना है, और एक बार लिख लेंगे एक अच्छी तरह से, पूरे पूरे लाइन को नहीं, केवल उनके गुणों को लिखिए। तो सब लोग कृपया कल लिख कर लाइएगा, देखें कौन कितने ज्यादा गुणों को लिख कर लाते हैं भक्तों के। तो कहने लगे कि ये मार्ग है भक्तों से आसक्ति, और भक्त कौन है, ये भक्त हैं। तो भक्तों के भी लक्षण वो देते हैं, साथ ही साथ बहुत आगे वो आगे वर्णन करते हैं कि कैसे उनके जो लक्षण होते हैं। जैसे हमने थोड़े लक्षणों को पढ़ा कि करना चाहिए, कैसे वो भगवान के भक्त होते हैं। तो उसके आगे माता देवहूति फिर से प्रश्न करती हैं। ये 28वें श्लोक से 30वें श्लोक तक उनका प्रश्न है, दो प्रश्न उन्होंने किए, और उनमें से पहले प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोकों में इस अध्याय में अंत तक 44वें श्लोक तक भगवान देते हैं। तो माता ने दो प्रश्न किए, क्या प्रश्न थे, उन्होंने कहा कि आपने भक्ति का वर्णन किया, अब ये बताइए कि मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार की भक्ति। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान और वैराग्य का मार्ग है, आपने ज्ञान का वर्णन किया, योग का वर्णन किया, तो ज्ञान और योग में क्या भेद, ज्ञान और वैराग्य क्या है, ज्ञान योग कैसा है, इसका भी वर्णन कीजिए। तो ज्ञान और योग का वर्णन आगे के अध्यायों में करेंगे। लेकिन जब माता देवहूति ने पूछा कि मुझे कैसी भक्ति करनी चाहिए, तो फिर भगवान आगे उत्तर देना चालू करते हैं, उत्तर देना कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं रखकर भगवान की शुद्ध भक्ति करो, इसका वो वर्णन करते हैं। तो इसके द्वारा ही आप मुक्ति पा सकते हो। तो फिर वो बताते हैं कि इसका लाभ क्या होता है अगर आप ऐसी भक्ति करते हो पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान को। तो भगवान अनुमति देते हैं, भगवान किसकी अनुमति देते हैं कि आप उनके रूप को देख सको, आप उनसे बातें कर सको, ये चीजें भगवान देते हैं। कल किसी ने प्रश्न किया था हमसे, आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान से बातें की हैं। भगवान देते हैं अनुमति, उस भक्त की भक्ति को देखकर भगवान कपिल यहां कह रहे हैं कि अगर ये ऐसी भक्ति हमारी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, तो भगवान अनुमति देते हैं अपने रूप को देखने की, अपने से बात करने की ऐसे भक्त को। तो ऐसी भक्ति आपको करनी चाहिए। और साथ ही साथ भक्तों के क्या गुण होते हैं, अगर भगवान उन्हें मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं, वो चाहते नहीं हैं लेकिन भगवान उन्हें मुक्ति दे देते हैं, तो पहले तो वो अपने रूप को दिखला देते हैं, मुक्ति भी दे देते हैं। आगे भी वर्णन आएगा, श्लोक आएंगे कि भगवान के भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते लेकिन भगवान प्रदान कर देते हैं। तो यहां वो कह रहे हैं कि भगवान प्रदान कर देते हैं और साथ ही साथ अंततः वो अपने धाम में लेकर जाते हैं। तो कैसे ले जाते हैं धाम में, आपको मुक्त करते हैं, मतलब केवल मुक्ति नहीं देते, मुक्ति कई प्रकार की होती है, वो अपने धाम में ले जाते हैं। और धाम कैसा है, धाम स्वर्ग की तरह नहीं है। स्वर्ग क्या है, थोड़े समय जाना है फिर वापस आ जाना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जिन लोगों ने पुण्य कमा लिए हैं तो वे लोग जाकर वहां रहते हैं, लेकिन जब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो लोग स्वर्गलोक में जाकर भोग करते हैं लेकिन जब क्षीणे पुण्य, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, मर्त्य लोकम विशन्ति, फिर से आ जाते हैं। तो भगवान का धाम ऐसा नहीं है, अशाश्वत नहीं है, शाश्वत धाम है। तो इस धाम में भगवान ले जाते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। और फिर भक्ति का वर्णन वो कुछ श्लोकों में करते हैं, वैदी भक्ति, एक दो श्लोकों में वो वैदी भक्ति का वर्णन करते हैं कि हमें पहले वैदी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर इतने ऊंचे स्तर की भक्ति हम नहीं कर सकते हैं तो फिर उन्हें भक्ति करनी चाहिए। और फिर एक बात कहते हैं, देवताओं के विषय में मानो प्रश्न आया हो देवहूति के विषय मन में कि क्या देवताओं की अगर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या देवता नाराज नहीं हो जाएंगे। आप बोल रहे हैं केवल मेरी भक्ति करनी चाहिए, देवताओं की क्या, तो कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं सारे देवता भी मुझसे भयभीत रहते हैं और उन्हें आनंद आता है अगर कोई मेरी भक्ति करता है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं देवताओं की, केवल भगवान की भक्ति करनी। और फिर ऐसा कह के वो अपनी माता को कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति में, अपने मन को पूर्ण रूप से भक्ति में लगाना चाहिए। तो आप जब भक्ति करें तो ऐसी भक्ति करें कि आपका मन पूर्ण रूप से भगवान में लग सके। और ऐसे कहकर फिर इस अध्याय के अंत में भक्ति की महिमा का उन्होंने गुणगान कर दिया। और अब अगले अध्याय में हम लोग, जैसे हमने कहा था कि आगे योग का, सांख्य का वो वर्णन अध्यायों में करेंगे, तो कल उस अध्याय का प्रारंभ होगा। इस अध्याय के अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, जिन व्यक्तियों का मन भगवान में स्थिर है वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं, जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है। हरे